नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मॉर्से पहुंच गए हैं। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज संयुक्त रूप से मॉर्से में भारत के पहले नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी और मैक्रों कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्री मोदी ने यह भी बताया कि वह आज प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दो बड़ी परियोजनाओं के लिए 72.8 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। इस राशि से कांगड़ा जिला में बन रही फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 67.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि हमीरपुर जिला के नादौन की परियोजना को 4.58 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। केंद्र सरकार ने यह धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इस बजट से फिनिशिंग प्रोजेक्ट पर 66.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जारी की है। इस परियोजना का शिलान्यास 2012 में किया गया था। उस समय इसकी लागत करीब 204 करोड़ रुपए थी और नूरपुर क्षेत्र की 11 पंचायतों के 60 गांवों के 4025 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलनी थी। फिन्ना सिंह परियोजना पर 90% केंद्र सरकार और 10% प्रदेश सरकार की ओर से खर्च होना था। उम्मीद है कि इस बजट के बाद नहर का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा और नूरपुर क्षेत्र में हरियाली आएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से संदीप कुमार।
प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान चल रहा है। कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन के प्रतीक इस स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था के साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी को आरम्भ हुआ है। अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई है। आज पूरे देश में संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। वे 14वीं सदी के महान संत थे। उनके अनुयायी हर वर्ष माघी पूर्णिमा पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्र होते हैं। इस अवसर पर राज्य के कई भागों में भी शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। श्री गुरु रविदास महान संत, दार्शनिक और कवि होने के साथ साथ उत्तरी भारत भक्ति आंदोलन के भी प्रमुख रहे हैं। पुलिस कांस्टेबलों के एक से दूसरे जिले में तबादले करने के लिए पारित संशोधन विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति निवास के लिए भेज दिया है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के पुलिस आरक्षियों का भी जिला के बजाय राज्य काडर होगा। संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर पुलिस सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 से खुले बाजार में गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री के लिए वर्ष 2024-25 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना नीति जारी की है। सांसद सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीबाई भांबणिया ने यह जानकारी दी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान के उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र गढ़सा जिला कुल्लू के 63वें स्थापना दिवस पर कल कुल्लू में क्षेत्रीय किसान मेला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व किसान वैज्ञानिक संवाद के रूप में आयोजित किया गया। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व किसान वैज्ञानिक संवाद का आयोजन केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं के माध्यम से किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों से वैज्ञानिक तरीके से भेड़ पालन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर किसानों द्वारा भेड़ की ऊन उत्पादों से बनाए गए पारंपरिक परिधानों की सुंदर झांकी भी निकाली। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश की महिला हैंडबॉल टीम ने फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम देशभर में रोशन किया है। हिमाचल की टीम ने हरियाणा को 7 गोल से मात देकर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस शानदार विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।